Om Namah Siddhaya. Om Namah Siddhaya. Om Namah Siddhaya. Om Shuddhatmane Namah. Namo Arihantanam. Namo Siddhanam. Namo Ayariyanam. Namo Vajrayanam. Namo Loe Savasahunam. Antaimajaraya. Jai Jaramaranantapurada. Samsaralayatamaham. जेनचिन्नाजिनम वंदे।
यह श्री वीरसेन आचार्य रचित जयधोला टीका है, जो कषाय पाहुर तथा चुनी सूत्र ग्रंथों पर लिखी हुई है, जिनके कर्ता है गुणधर भट्टारक तथा यतीर्षव आचार्य, जिन्होंने भगवान महावीर के उपदेश के अनुसार इन ग्रंथों की रचना की है। चतुर्थ पुस्तक में अभी हम पृष्ठ संख्या 64 पर आ गए। 64 स्पर्शन की बात चल रही थी, नाना जीवों की अपेक्षा। यहाँ 64 पृष्ठ पर अंतिम पैराग्राफ वहां पढ़ेंगे हम, क्योंकि हम मार्गणाओं में बात चल रही थी। तो कहते एकेंद्रियों में मिथ्यात्व 16 कषाय और 9 कषायों के सम्यक, तो सम्यक मिथ्यात्व छोड़कर सबको लिया। 3 पद वाले जीवों का स्पर्श ओघ के समान है, ने पूरा लोक है। एक इंद्रिय तो पूरे लोक में है, तो उनके पद भी सभी पूरे लोक में हो गए। सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व की अल्पतर स्थिति विभक्ति वाले जीवों का स्पर्श पंचेंद्रिय तिर्यंच अपर्याप्तकों के समान है। यानी वहां कितना हमने लोक का असंख्यात्व भाग देखा होगा, पंचेंद्र तिर्यंच अपर्याप्तकों की कल बात देखी थी ना, 63 पृष्ठ पर। वहां पंचेंद्र तिर्यंचों के समान है कहा था। हाँ, 162 पृष्ठ पर 120 नंबर का जो पॉइंट है उसमें लिखा है सम्यक्त और सम्यक मिथ्यात्व की अल्पतर स्थिति विभक्ति वालों का भंग मिथ्यात्व के समान है। हाँ वही तो, वो लोग के असंख्यात विभाग और सब लोग दोनों लिए ना, मारणांतिक आदि की अपेक्षा। आगे इसी प्रकार जैसे सामान्य एकेंद्रियों में देखा, इसी प्रकार पृथ्वी कायिक आदि 4 स्थावर काय, इनके बादर तथा बादर अपर्याप्त सभी सूक्ष्म तथा इनके पर्याप्त और अपर्याप्त बादर वनस्पति कायिक प्रत्येक शरीर और उनके अपर्याप्त वनस्पति कायिक निगोद औदारिक मिश्र कायोगी कार्माण कायोगी मत्य ज्ञानी श्रुता ज्ञानी मिथ्या दृष्टि असंगी और अनाहारक जीवों के जानना चाहिए। इसका विशेषार्थ एकेंद्रियों में मिथ्यात्वादी 26 प्रकृतियों के 3 पद वालों के स्पर्श को ओघ के समान सब लोग बतलाने का कारण यह है कि ये जीव सब लोग में पाए जाते हैं, तथा सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व के अल्पतर स्थिति वालों के स्पर्श को पंचेंद्रिय तिर्यंच अपर्याप्तकों के समान बतलाने का कारण यह है कि जिस प्रकार पंचेंद्रिय तिर्यंच अपर्याप्तकों में इन प्रकृतियों की अल्पतर स्थिति वालों का वर्तमान कालीन स्पर्श लोक के असंख्यातवे भाग प्रमाण है जो क्षेत्र में घटित होता है, और अतीतकालीन स्पर्श सब लोग पाया जाता है मारणांतिक उपपाद आदि की अपेक्षा वो घटित होता है। उसी प्रकार एकेंद्रियों में भी बन जाता है। इसी प्रकार चारों स्थावरकाय आदि मार्गणाओं में स्पर्श का विवेचन कर लेना चाहिए। आगे पंचेंद्रिय पंचेंद्रिय पर्याप्त। पहले तो हमने तिर्यंचों में पंचेंद्रिय देखे थे, अब यहाँ पंचेंद्रिय पंचेंद्रिय पर्याप्त, त्रस और त्रस पर्याप्त जीवों में मिथ्यात्व 12 कषाय और 9 नौ कषायों के, यहाँ अनंतानुबंधी को छोड़ा है क्योंकि पंचेंद्रिय लेते हैं तो उसमें हाँ वो अवक्तव्य वाला भी भंग होगा। इनके तीन पद विभक्ति वाले जीवों ने लोक के असंख्यात विभाग, ये तो वर्तमान क्षेत्र हुआ, त्रसनाली के 14 भागों में से कुछ कम 8 भाग ये देवों की अपेक्षा से विहार की बात लिया है, और सब लोग प्रमाण क्षेत्र का स्पर्श किया है क्योंकि हम पंचेंद्रिय कहते हैं तो तिर्यंच मनुष्य भी है तो मारणांतिक की अपेक्षा ये सब लोग घटित होगा। किंतु इतनी विशेषता है कि स्त्रीवेद और पुरुषवेद की भुजगार और अवस्थित स्थिति विभक्ति वाले जीवों ने त्रसनाली के 14 भागों में से कुछ कम 8 और कुछ कम 12 भाग प्रमाण क्षेत्र का स्पर्श किया है। स्त्रीवेद और पुरुषवेद की भुजगार और अवस्थित, अब इसका नीचे मारणांतिक और उपपाद की अपेक्षा बताया होगा।
तो मारणांतिक और उपपाद की ऊपर तो 7 राज्य तक ऊपर से 7वें राज्य से जो सर्वार सिद्धि से जो देव आते हैं,
सर्वार सिद्धि से आने वालों की उसकी क्या बात है?
तो ऊपर से 7 राज्य भी ले सकते हैं और नीचे 6 राज्य लिया।
नहीं नहीं नहीं, ये किसमें घटित करना है? स्त्रीवेद और पुरुषवेद की भुजगार। तो उसकी भुजगार कैसी होगी? सर्वार सिद्धि से आते हैं तो जितनी है उससे तो कम ही होती चली जाएगी, सम्यक दृष्टि है ना, ये तो लगातार अल्पतर ही होगा, उसमें भुजगार नहीं होगा। इसलिए ऊपर 6 राजू तक ही लिया और नीचे 6 राजू लिया। ख्याल में आती बात? अनंतानुबंधी चतुष्क की अपेक्षा इसी प्रकार जानना चाहिए। किंतु इतनी विशेषता है कि अवक्तव्य स्थिति विभक्ति वाले जीवों का स्पर्श ओघ के समान है। अनंतानुबंधी के अवक्तव्य में तो हमने देखा था लोक का असंख्यात भाग होगा और वो 8/14 होगा। सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व की अपेक्षा स्पर्श ओघ के समान है, यानी लोक का असंख्यात और पूरा लोक अल्पतर है ना, पंचेंद्रियों में अल्पतर जो कहेंगे। इसी प्रकार पांचों मनोयोगी, पांचों वचन योगी, स्त्रीवेद वाले, पुरुषवेद वाले, चक्षु दर्शन वाले और संगी जीवों के जानना चाहिए। किंतु इतनी विशेषता है कि स्त्री और पुरुषवेद मार्गणाओं में स्त्री और पुरुषवेद की भुजगार और अवस्थित स्थिति विभक्ति वाले जीवों ने त्रसनाली के 14 भागों में से कुछ कम 8 भाग प्रमाण क्षेत्र का स्पर्श किया है। इसका विशेषार्थ पंचेंद्रिय आदि 4 मार्गणाओं में, तो मार्गणाओं में और क्यों लिखा है? स्पर्श तो सुगम है और नहीं चाहिए, क्षेत्र तो बता दिया था उन्होंने। किंतु स्त्रीवेद और पुरुषवेद की भुजगार और अवस्थित स्थिति विभक्ति वालों का स्पर्श जो कुछ कम 8/14 राजू बतलाया है वह विहार आदि की अपेक्षा बतलाया है, तथा कुछ कम 12/14 राजू स्पर्श मारणांतिक और उपपाद पद की अपेक्षा बतलाया है। छह राजू ऊपर और छह राजू नीचे तक, क्योंकि उसके छह राजू के ऊपर अल्पत्र वाले भंग हो गए।
नीचे से जो मार्डन भी करते उनका तो नपुसक वेद है।
हाँ, नपुसक वेद
तो पांडांती की अपेक्षा तो नहीं, उपपाद की अपेक्षा ही होगा। तो उपपाद की
अपेक्षा दे, देखो क्या कहते हैं, पंचेंद्रिय मार्गणा में स्त्री और पुरुष वेद की बात है।
अच्छा, बल की अपेक्षा,
वो सत्ता की अपेक्षा बात चल रही, सत्ता में है और संक्रमण की अपेक्षा बात करेंगे उसकी। वो जो है ना स्त्री वेदी में और बात अलग लेंगे, स्त्री वेदियों में बात अलग लेंगे।
अभी ये स्त्री वेद और पुरुष वेद का बंद कर रहा है,
स्त्री वेद और पुरुष वेद का बंद कर रहा है, तो वहां से भी स्त्री वेद पुरुष वेद का बंद करके आ सकते हैं ना। नारकी में से भी आने वाले हैं, वहां जाने वाले तो नपुंसक वेद का बंद करेंगे, वहां से आने वाले उसको भी ले सकते हैं। देखो ये निकालो जरा, पुरुष वेद का स्वामित्व निकालो, किसको ज्यादा होता है, तो कंफ्यूजन नहीं होगा। एक जीव की अपेक्षा स्वामित्व हम देखेंगे। काल निकला उसके आगे, पहले उसके पहले, काल के पहले स्वामी कौन है, सात पृष्ठ के बाद। सात में तो सम्यक की बात है और वक्तव्य की बात है। नौवे में हाँ, ग्यारह पेज में मिला। ग्यारह पेज में नीचे अल्पतर स्थिति विभक्ति किसके होती है, अवस्थित किसके होती है, अवक्तव्य किसके होती है, वो नहीं लेना हमें। सम्यक तो सम्यक, मिथ्यात्व की बात नहीं, हमको वेदों की बात लेनी है। क्या नौ नौ कषायों को एक साथ लिया उन्होंने, मिथ्यात्व की ली थी, फिर सम्यक्त्व सम्यक मिथ्यात्व की ली है, और उसके बाद शेष कर्मों का ऐसा ही जानना चाहिए, इतना ही लिखा था। तीनों वेद वाले लिए, वेद वालों की बात नहीं है, वेदों की भुजकार लेना है। भुजगार काल देखेंगे उसका, काल में तो मिल गया था वो, क्योंकि लगातार कितने समय तक, तो उसमें हमने देखा था 19 समय प्राप्त होते थे। और देखो ये बात वेदों की बात यहाँ ली है, 21 और 22 23 उसमें है। बाईस पृष्ठ पर मिलेगा, नीचे कुछ ये 22-23 पृष्ठ पर उसका काल बताया है, वो जो हमने 17 समय और 19 समय वो देखी थी ना, वो बात वहां पर है। ठीक है, यहाँ आते हैं ओरिजिनल पृष्ठ पर अपन। ये कितने समय तक लगातार हो सकते ना, उसकी बात यहाँ पर हमने देखे थे ना कि वो लगातार उसके 19 समय घटित हो सकता है वगैरह वगैरह। देखो ये बात 30 पृष्ठ पर जरा पढ़ के फिर लेंगे आगे। पहले हम तिर्यंच अपर्याप्तकों में देखेंगे, फिर आगे देखेंगे। देखो यहाँ ऐसा समझ लेते हम, नारके में आपने जो बताया ना वेदों की बात, तो नारकी में तो नपुसक वेद होता है। तो नारकी में उत्पन्न होने के पहले पूर्व मनुष्य तिर्यंच में अंतर्मूर्त तक तो नपुसक वेद का ही बंद होगा।
और मरण के समय
तो नपुसक वेद का बंद होता है, तो स्त्री वेद और पुरुष वेद में वो संक्रमण नहीं होगा, भुजाकार रूप से वो नहीं पाया जाएगा। परंतु यहाँ से अन्य जो उत्पन्न होने वाला है नारकी में से, अभी जो मनुष्य तिर्यंचों में आने वाला है, वो पुरुष वेद या स्त्री वेद का बंद कर सकता है, क्योंकि बंद के काल में ही संक्रमण पाया जाता है, ये नियम है। देखो यहाँ तिर्यंच अपर्याप्त की बात यहाँ ली है। नीचे तिर्यंच अपर्याप्तकों की बात देखेंगे। पंचेंद्रिय तिर्यंच अपर्याप्तकों में मिथ्यात्व 16 कषाय और 9 कषायों की अल्पतर स्थिति विभक्ति का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त कहा, क्योंकि अपर्याप्तों की भी अंतर्मूर्त आयु होती है, ये लगातार रहे तो भी अंतर्मूर्त होते हैं। और शेष स्थिति विभक्तियों का भंग तिर्यंचों के समान है, किंतु इतनी विशेषता है कि स्त्री वेद और पुरुष वेद की भुजगार स्थिति विभक्ति का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल 17 समय है। वो 17 समय का उन्होंने ऐसा वहां बताया था जो 31 पृष्ठ पर विशेषार्थ में लिया है, सेकंड लाइन में अंत में, तथा इनके यानी तिर्यंच लब्धि अपर्याप्त पंचेंद्रियों के इनके स्त्रीवेद और पुरुष वेद की भुजगार स्थिति का उत्कृष्ट काल 18 समय प्राप्त न होकर 17 समय ही प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि ये लब्धि अपर्याप्तक है, सम्मूर्छन है, नपुसक वेदी है। हाँ, ख्याल है ना? तो उसमें भी वो 17 समय प्राप्त हो गए, 18-19 नहीं हो गए।
मेरा कैसे वही अपेक्षा था कि ये नपुसक वेद वाला है, वो मरण के समय भी नपुसक वेद का ही बंद करेगा, वो उल्टा।
हाँ, यानी नरक आप उल्टा घटित कर रहे थे, यहाँ नरक में जाने वाले के लिए वो घटित करना चाहिए। देखो ये अभी हमने पंचेंद्रिय पंचेंद्रिय पर्याप्त हम पढ़ रहे थे ना, वो 34 पृष्ठ निकालना, 34। वहां पंचेंद्रिय और पंचेंद्रिय पर्याप्तकों में संगी और असंगी दोनों लिए, तो उसके कारण भुजगार मिथ्यात्व के भुजगार आदि का 3 समय और 16 कषाय 9 कषाय उनका जो भुजगार है उसका उत्कृष्ट काल 18 समय बताया था। अब यहाँ जो हम देख रहे हैं, अब यहाँ है मूल पृष्ठ पर 65 पढ़ रहे थे ना हम, स्त्रीवेद और पुरुष वेद की भुजगार। और अब यहाँ काल नहीं देखना है हमको, स्पर्श देखना है। कोई जीव होते हैं कि नहीं होते उतना ही हमको देखना था। तो ये किस अवस्था में हो सकता है स्त्री वेद और पुरुष वेद की? भुजगार ये पंचेंद्रिय में स्त्री वेद और पुरुष वेद की भुजगार और अवस्थित स्थिति विभक्ति वालों का स्पर्श कुछ कम 8/14 राजू बतलाए तो विहार की अपेक्षा, क्योंकि देव भी करेंगे ना उसको, और कुछ कम 12/14 राजू प्रमाण स्पर्श मारणांतिक और उपपाद पद की अपेक्षा बतलाया, नरक में से निकलने वाले जीव लेना वहां पर। अपनी क्राइटेरिया नारकी की नहीं है, पंचेंद्रियों की, तो वहां से पंचेंद्रियों में उत्पन्न होने वाले का उपपाद भी हो सकता है और नारकी रहते हुए वहां से मारणांतिक भी हो सकता है। ये दो बातें घटित करने हैं, ये अभी हमने पढ़ा। आगे विशेषांत की चौथी लाइन पढ़ रहे 65 पेज पर। यहाँ इन दोनों प्रकृतियों के उक्त पदों की अपेक्षा इससे अधिक स्पर्श नहीं प्राप्त होता। इसी प्रकार 5 मनोयोगी आदि मार्गणाओं में भी घटित कर लेना चाहिए, किंतु स्त्रीवेद और पुरुषवेद मार्गणाओं में, यानी स्त्री वेदी जीव और पुरुष वेदी जीव, अभी मार्गणा बदल गए। पहले तो मार्गणा थी पंचेंद्रियों की थी, तो उसमें नारकी नपुसक वेदी होते हुए भी पंचेंद्रिय है और जहाँ उत्पन्न होना वो भी पंचेंद्रिय है, तो किसका बंद कर रहे क्या है उसके अकॉर्डिंगली मारणांतिक भी घटित होता था। अब नारकी में से आने वाले को नहीं ले सकते क्योंकि वहां तो स्त्री वेदी मार्गणा नहीं घटित होगी। स्त्री वेदी किसको कहेंगे? जिनको स्त्री वेद का उदय है। तो स्त्रीवेद में से स्त्रीवेद में जन्मने वाला मनुष्य में से तिरेंच में जाओ या वहां से देव हो तो वो तो चले,
और देव में आने वाले
हाँ स्त्रीवेद में से स्त्रीवेद, परंतु नारकी को उसमें नहीं इंक्लूड कर सकते। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, स्त्रीवेद और पुरुषवेद मार्गणाओं में जो स्त्रीवेद और पुरुषवेद की भुजगार और अल्पतर स्थिति वालों का स्पर्श कुछ कम 8/14 राजू बतलाया है, सो इसका कारण यह है ये जीव अधिकतर देव होते हैं। स्त्री वेदी भी है और पुरुष वेदी भी है ना बाप, जो तीसरे नरक तक नीचे और अच्युत कल्प तक ऊपर विहार करते हुए पाए जाते हैं। इसके ऊपर यद्यपि पुरुष वेदी जीव है पर वे विहार नहीं करते हैं। बिहार का बिहार क्या, उसी कारण बिहार का नाम पड़ा है ना, महावीर भगवान का बिहार होता था ना उस जगह, मालूम है कि नहीं? बिहार स्टेट है ना, नाम क्यों पड़ा बिहार? समोसरण उस भाग में लगता था, बिहार होता था। हाँ देखो, ये पुरुष वेदी जीव है ऊपर भी, परंतु वे बिहार नहीं करते, अतः उनका स्पर्श लोक के असंख्यातवे भाग प्रमाण ही है, इसलिए उससे इस स्पर्श में कोई विशेषता नहीं आती। आगे वैक्रिय कायोगियों में मिथ्यात्व 12 कषाय और 9 कषायों के 3 पद वाले जीवों ने लोक के असंख्यात विभाग, वैक्रिक कायोगी कोई भी कर सकते हैं, देव भी और नारकी भी, और त्रस नाली के 14 भागों में से कुछ कम 8 और कुछ कम 13 भाग प्रमाण क्षेत्र का स्पर्श किया है।
तो यह पुरुष वेद का तो जो लोक का असंख्यात विभाग बताया वो मारणांतिक की अपेक्षा घटित ज्यादा नहीं है।
कहाँ कहाँ कहाँ?
ये जो हमने देखा ना इसके ऊपर
पुरुष वेदी जीव के
पर वे विहार नहीं करते, पर अनुदिश और अनुत्तर वाले भी मारणांतिक करते हैं ना, तो मारणांतिक की अपेक्षा उनका लोक का असंख्यात विभाग से ज्यादा हो जाएगा।
देखो उसमें किसकी बात चल रही है, अपने
पुरुष वेद की बात,
पुरुष वेद के भुजगार और अल्पतर स्थिति वालों का स्पर्श चल रहा है।
अच्छा, वहाँ पे तो अल्पतर ही होगा,
वो तो अकेला अल्पतर होता है। और फिर भी उनकी संख्या कितनी अल्प है वहाँ की, तो उसकी अपेक्षा भी वो लोक का असंख्यात्व भाग ही घटित होगा। अब जो हम पढ़ रहे हैं वैक्रेक का योगियों में मिथ्या तो 12 कषाय और 9 कषाय के तीन पद वाले जीवों ने लोक का असंख्यातवा भाग ये वर्तमान क्षेत्र घटित होता है। त्रस नाली के 14 भागों में से कुछ कम 8 विहार की अपेक्षा और कुछ कम 13 भाग प्रमाण क्षेत्र का स्पर्श किया है, ये तो मारणांतिक की अपेक्षा होगा। किंतु इतनी विशेषता है कि स्त्रीवेद और पुरुष वेद की भुजगार और अवस्थित स्थिति विभक्ति वाले जीवों ने, अब उसमें भुजगार और अवस्थित लिए दोनों, त्रस नाली के 14 भागों में से कुछ कम 8 और कुछ कम 12 भाग प्रमाण क्षेत्र का स्पर्श किया है। क्योंकि ऊपर के सारे तो अल्पतर वाले होते हैं और ग्रेवेक और ऊपर में तो स्त्रीवेदी होते ही नहीं है और उनके वो स्त्री वेद वाले भी नहीं होते हैं, पुरुष वेद में है और पुरुष वेद में ही उत्पन्न हो गए।
अल्पतर के साथ ही उत्पन्न,
हाँ अल्पतर के साथ हो गए, यानी उनके मारणांतिक अवस्था में भी अल्पतर ही पाया जाएगा, ये बात बताना चाहते, भुजगार नहीं होगा। अन्यत्र मारणांतिक में जो भुजगार घटित होता है वो इनमें नहीं पाया जाएगा, इसलिए 6 राजू ऊपर और 6 राजू नीचे तक लिया उनको। अनंतानुबंधी चतुष्क की अपेक्षा इसी प्रकार जानना चाहिए जैसे हमने मिथ्या तो 12 कषाय में देखा था, ऐसे इनमें भी होगा। किंतु इतनी विशेषता है कि अवक्तव्य स्थिति विभक्ति वाले जीवों का भंग ओघ के समान है, क्योंकि अवक्तव्य वाले जो है सम्यक्त्व में से वो विषय योजना करके अभी मिथ्यात्व में आया है, ऐसा जीव लेना है तो लोक का असंख्यात्व भाग ही घटित होगा।
और आठ राजू भी घटित हो जाएगा,
हाँ 14 वो विहार की अपेक्षा स्पर्श अतीत काल की अपेक्षा वो भी होगा कि 8/14 राजू। सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व की अल्पतर स्थिति विभक्ति वाले जीवों का भंग मिथ्यात्व के समान है, वैक्रियक काय योगियों में इनको घटित करना है। तो लोक का असंख्यात भाग 8/14 और कुछ कम 13 भाग तथा शेष कथन ओघ के समान है, वैक्रियक मिश्र काय योगियों में क्षेत्र के समान भंग है। क्यों? हाँ एक बात अंतर्मूर्त है, तो क्या हुआ? वैक्रिक मिश्र में मारणांतिक नहीं होगा, जैसे वैक्रिक काय योगी में हमने घटित किया था, विहार भी नहीं होगा। हाँ अभी विशेषार्थ पढ़ेंगे। अन्यत्र वैक्रिक काय योगियों का स्पर्श जो तीन प्रकार का बतलाया है वही यहाँ मिथ्यात्व आदि के तीन पदों की अपेक्षा प्राप्त होता है जो मूल में बतलाया ही है। किंतु इनमें स्त्रीवेद और पुरुषवेद की भुजगार और अल्पतर स्थिति वालों का वही स्पर्श होता है जो पंचेंद्रिय जीवों के पहले बतलाए हैं, इसलिए यहाँ इसका तत्प्रमाण कथन किया। वैक्रिय कायोगियों में अनंतानुबंधी चतुष्क का स्पर्श इसी प्रकार है, यह जो कहा है सो इसका यह तात्पर्य है, जिस प्रकार इनमें मिथ्यात्व आदि के संभव पदों का स्पर्श बतलाया है उसी प्रकार अनंतानुबंधी चतुष्क के अवक्तव्य पद को छोड़कर शेष पदों का स्पर्श जानना चाहिए। एक अवक्तव्य अलग निकालो, बाकी तो अन्य 12 कषाय उनके समान होगा उसका भी। शेष कथन सुगम है। अब विभंग ज्ञानियों में मिथ्यात्व, कॉमा लगाना वहां पर, 16 कषाय और 9 कषायों के तीन पद और सम्यक्त्व तथा सम्यक मिथ्यात्व की अल्पतर स्थिति का भंग पंचेंद्रियों के समान है। विभंग ज्ञानी है तो संगी पंचेंद्रिय है। तो वर्तमान कालीन स्पर्श तो उनका लोक का असंख्यात्व भाग है। तो पंचेंद्रियों के समान हमने क्या देखा था? पांच पृष्ठ पर 123 में लोक का असंख्यात्व भाग, 14 भागों में से कुछ कम 8 भाग और सब लोग देखा था। तो पंचेंद्रियों में तो सब लोग देखा, विभंग ज्ञानी में भी हो सकता है। क्योंकि विभंग ज्ञानी मनुष्य तिरंज भी हो गए तो एकेंद्रियों में कहीं मारणांतिक भी करेंगे। अभिनिबोधिक ज्ञानी, श्रुत ज्ञानी और अधिज्ञानी जीवों में सब प्रकृतियों की अल्पतर स्थिति विभक्ति वाले जीवों ने लोक के असंख्यात भाग, ये वर्तमान है क्योंकि समय दृष्टि है तो लोक के असंख्यात भाग में ही पाए जाएंगे। अपना अपना
तो 8 भाग दे ले, पूरा लोक ही लेना है ना।
किसमें?
विभंग नालियों में।
विभंग
तो सभी जीव लेना है ना।
तीन बात बताए ना,
कसाई नौ कसाई।
विभंग ज्ञानी में एक तो लोक का असंख्यात भाग लिया, दूसरी बात 8/14 लिया।
नहीं, लोक का असंख्यात भाग विभंग ज्ञानी तो एक इंद्रिय की अपेक्षा पूरे लोक दे रहे थे। तो
विभंग ज्ञान किसके होते? संगी पंचेंद्रिय।
अच्छा, ये
आपने मिथ्या ज्ञान, अच्छा, मिथ्या ज्ञान को लिया, मत्य ज्ञानी को लिया आपने। देखो क्या है? अभी हम अभिनिबोधिक ज्ञानी, श्रुत ज्ञानी और अवधि ज्ञानी जीवों में, वहां तो अल्पतर होगा क्योंकि समय दृष्टि है ना ये सब। तो अल्पतर स्थिति विभक्ति वाले जीवों ने लोक के असंख्यात भाग, ये उनका अपना वर्तमान का क्षेत्र। त्रसनाली के 14 भागों में से कुछ कम 8 भाग प्रमाण, ये तो विहार की अपेक्षा है। और वो मारणांतिक करेंगे कि नहीं करेंगे? पूरे लोक में नहीं करेंगे। समय दृष्टि है ना। इसी प्रकार अवधि ज्ञानी समय दृष्टि, क्षायिक समय दृष्टि, वेदक समय दृष्टि, उपशम समय दृष्टि और सम्यक मिथ्या दृष्टि जीवों के जानना चाहिए। संयता संयतों में सब प्रकृतियों की अल्पतर स्थिति विभक्ति वाले जीवन ने लोक के असंख्यात भाग, त्रसनाली के 14 भागों में से कुछ कम 6 भाग, ये कैसे होगा? हाँ, क्या कहते? हाँ, देवों में उत्पन्न होने वाले तिरंजों की संख्या ज्यादा है ना, तो कहाँ तक करेंगे वो? सोलवे स्वर्ग तक। हाँ, इसलिए 6 राजू लिया। पीतलेशा का भंग सौधर्म समान और पद्मलेशा का भंग सहस्रार कल्प के समान है, क्योंकि पीतलेशा वहां तक है और पद्मलेशा सहस्रार तक है, तो वहां के समान उसका भंग होगा। सासाधन समय दृष्टियों में सब प्रकृतियों की अल्पतर स्थिति विभक्ति वाले जीवन ने लोक के असंख्यात भाग और त्रसनाली के 14 भागों में से कुछ कम, वो कम छपा नहीं बराबर, कुछ कम 8 और कुछ कम 12 भाग प्रमाण क्षेत्र का स्पर्श किया है।
हाँ,
ये जो नारकी जो है ना, नारकी जो मारणांतिक करेंगे उसके अपेक्षा, क्योंकि बाकी नरक में कोई मारणांतिक नहीं करेगा क्योंकि सासाधन वाला नरक में जाता ही नहीं है। हाँ, परंतु नारकी सासाधन में मरकर, हाँ, मनुष्य तिरंज में आएंगे तो वहां तो सातवें नरक को छोड़ देना है। सातवें नरक के नारकी को तो छोड़ना है। हाँ, वो तो मिथ्या तो में आएगा, परंतु यहाँ जो कुछ कम 12 कहा, तो सासाधन में उनका मारनांदिक भी नहीं होगा ना। क्योंकि आयु के अंत में ऑप्शन समय तो प्राप्त करेंगे, सासाधन में जाएंगे, तो क्या सासाधन में मारनांतिक हो सकता है उनका?
छियावली तक रहने वाले को होता ना।
हाँ, यानी बाद में उन्होंने मिथ्यात्व में जाके फिर आयु बंद करेंगे, फिर मरण होगा। इतना है क्या समय उनके पास? 14 भागों में से कुछ कम और कुछ कम 12 भाग ले लिया है।
आयु का बंद तो पहले भी हो सकता है ना, 14 महीने पहले।
हाँ, आयु का बंद तो 6 महीने पहले होता है। परंतु वो सासाधन में मारणांतिक करते कि नहीं, ये सवाल है, देखना पड़ेगा। उनका क्षेत्र स्पर्शन, हाँ है ना, करेंगे तो ठीक है, तो 6 राजो घटित होता है। 12 हमको लेना है ना, या ऐसा ले सकते हैं, एक मिनट, ऐसा भी ले सकते हैं ना कि ऊपर करने वाले देव भी ले सकते हैं, ऊपर 7 और नीचे 5। नहीं नहीं, देखो मारणांतिक करना है ना सासाधन में, तो देव मारणांतिक करेंगे, तो 7वीं पृथ्वी ऊपर, 8वीं पृथ्वी तक करेंगे, तो ऊपर 7 राजो उनके होगा, तो नारकी 7वें नरक में घटित नहीं करना, 7+5 ही लेना।
ये सासाधन में मारणांतिक करके एक ही दिन में जाएगा जो सव्यक कष्ट से गिरता है?
हाँ, सासाधन में मारणांतिक कर सकते हैं, क्योंकि मारणांतिक का काल सासाधन के बाद मारणांतिक अवस्था में फिर वो मिथ्यात्व में आ गया, और मिथ्यात्व में जाके वो वहां जन्म लेगा। मारणांतिक करने में कोई हर्जा नहीं है। हमने तो ऐसा भी देखा था, आपको याद होगा तो, समय ज्ञान चंद्रिका में 2 अपेक्षाएं बतलाई है। सासाधन में मरने वाला वहां तो एकेंद्रिय पर्याप्त, सभी पर्याप्त लिए, एकेंद्रिय द्विंद्रिय तीन्द्रिय चतुरिंद्रिय संगी असंगी सभी पर्याप्तों में वो वहां जन्म लेता है, और मिश्र अवस्था में ही वो मिथ्यात्व में आता है, ये अपेक्षा एक बतलाई है। तो उसको हम छोड़ भी देंगे, क्योंकि अन्यत्र उसको नहीं लिखा है, उसको स्वीकार नहीं किया है सबने। तो वो सासाधन में से मिथ्यात्व में जाता है और मरकर वहां पहुंचता है, परंतु सासाधन मरण के पूर्व में है ना, तो वहां मारणांतिक तो हो सकता है। तो इसलिए ऊपर 7 राजू और नीचे 5 राजू। देव की अपेक्षा आप 3 इंच मनुष्य भी एकेंद्रीय में जन्मने वाले ऊपर 8वीं पृथ्वी में, यानी 7 राजू, ग्रेवेक से सांसाधन में आ सकता है,
तो 6 राजू,
तो 7 राजू कहाँ घटित होगा? हाँ, हाँ, पर अनुदिश अनुत्तर सब 7 पूरे नहीं होते उसमें। ऊपर यानी एक राज्य में तीनों है ना वो। आधे राज्य में है वो ग्रेवेक है, वो आधे राज्य में है। नीचे 6ठी पृथ्वी से,
ये 7वीं पृथ्वी वाले तो सासाधन में मारणांतिक नहीं करेंगे ना,
क्योंकि
वो तो अंतर्मुख पहले ही वो मिथ्यात्व,
इसीलिए वो मारणांतिक भी नहीं करेंगे। यानी 6ठे नरक से मारणांतिक करने वाले लेना है, 6ठे नरक तक के जीव सासाधन में मारणांतिक करेंगे उसकी अपेक्षा लेना है, और अन्य जो देव 3 इंच मनुष्य जो मारणांतिक करके ऊपर 8वीं पृथ्वी में जाएंगे, 7 राजु ऊपर और नीचे 5 राजू से आने वाले, इस तरह से ले सकते हैं विशेषार्थ।
तो सासाधन में हम सभी एकेंद्रिय में मारणांतिक लेते हैं, तो इससे ज्यादा नहीं हो जाएगा 12 राजू से? क्योंकि सभी एक इंद्रिय में उत्पन्न होने वाले तो किधर भी जा सकते
हैं। नहीं, किधर भी नहीं जा सकते। सासाधन मर के जाने वाले तो दूसरी पृथ्वी से नीचे नहीं जाते, नीचे की पृथ्वी में जाते नहीं।
नीचे बराबर है, पर जो मध्यलोक में जो सासाधन में मरणांतिक करते हैं,
सासाधन में मरणांतिक करेंगे तो किसी भी एक इंद्रियों में नहीं जाएंगे, बादर एक इंद्रियों में करेंगे, और वो भी नीचे के बादर में भी नहीं करेंगे, नीचे की पृथ्वियों में भी नहीं जाएंगे। पहले हमने देखा था इसकी, देखो अभी 67 पेज पर विशेषार्थ। यहाँ विभंग ज्ञानी आदि जितनी मार्गणाओं में अपने अपने संभव पदों की अपेक्षा स्पर्शन बतलाया है, वह उन मार्गणाओं के स्पर्शन को जानकर घटित कर लेना चाहिए। कोई विशेषता न होने से उसका हमने अलग से स्पष्टीकरण नहीं किया है। इस प्रकार स्पर्शनानुगम समाप्त हुआ। नाना जीवे ही कालो, नाना जीवों की अपेक्षा पहले हमने भंग विषय देखा था, है ना, भागा भाग देखा, परिमाण देखा, क्षेत्र स्पर्शन देख लिया, अब काल बता रहे हैं। अब नाना जीवों की अपेक्षा कालानुगम का अधिकार है, यह सूत्र सुगम है। सम्मत सम्मम इच्छत्ताणम भुजगार अवट्ठिद अवत्तवट्ठिद विहत्या केवचिरम कालादो होती। सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व की भुजगार अवस्थित और अवक्तव्य स्थिति विभक्ति वाले जीवों का कितना काल है, यह सूत्र भी सुगम है। ये डायरेक्ट सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व को क्यों चालू किया? हाँ जया बेन, मिथ्यात्व की बात नहीं उठाई। हाँ निरंतर देखो, क्यों हमने भंग विषय में देखा था, वो हमेशा ही हो गए। पेज नंबर 50 पर देखा था, देखो हमने मिथ्यात्व 16 नीचे से वो दूसरा सूत्र, मिथ्यात्व 16 कषाय और 9 कषायों की भुजगार स्थिति विभक्ति वाले, अल्पतर स्थिति विभक्ति वाले और अवस्थित स्थिति विभक्ति वाले जीव नियम से है, यानी ये ध्रुव भंग है, निरंतर है। जिसमें वो भजनीय वाले हैं उसको बताएंगे, तो लगातार रहने कोई ना कोई जीव उस पद में है, ऐसा मिनिमम कितने काल तक हो सकता है, उसको नाना जीवों की अपेक्षा जघन्य काल कहेंगे, और अधिक से अधिक उसको उत्कृष्ट काल कहेंगे। तो यहाँ कहते हैं जघन्य काल बताएंगे अभी, जघन्य न एक समो, जघन्य काल एक समय है, क्योंकि हमने देखा था सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व की भुजगार कब हो सकता है, सम्यक्त्व प्राप्त के पहले समय। अकेला वेदक नहीं कह सकते आप, क्योंकि हमने देखा था उद्वेलना करते करते कम हुआ है और उसने औपशमिक समय तो प्राप्त किया, तो वो भी भुजगार होगा। अवस्थित में हमने वेदक लिया था, क्योंकि वो तो 28वीं सत्ता वाला है और फिर वो वेदक करता है, वो अवस्थित होता है। और अवक्तव्य भी कब होगा, उद्वेलना जिसकी पूरी हुई या जिसके सत्व नहीं है और औपशमिक समय तो प्राप्त करेगा। तो इसके लिए कोई अगर करता है तो एक समय के लिए लगातार अगर होता हो तो कोई ना कोई जीव करेगा, मान लेते तो एक समय के लिए हुआ, उसके पश्चात उसमें हो सकता है अंतर पड़ गया, किसी ने नहीं किया, तो जघन्य काल एक समय है। क्योंकि सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व की भुजगार अवस्थित और अवक्तव्य स्थिति विभक्तियों को एक समय तक करके दूसरे समय में उन सब जीवों का अल्पतर स्थिति विभक्ति में गमन पाया जाता है। क्यों गमन पाया जाता है, भुजकार के बाद अल्पतर क्यों होगा गमन, क्योंकि सम्यक्त्व के पहले समय में भुजगार है या अवस्थित है, अवक्तव्य है, उसके पश्चात सम्यक दृष्टि रहा हो तो उसके अल्पतर चालू रहेगा। अब ये जो भुजगार किसी ने किया, दूसरे ने किया, तीसरे ने किया, ऐसे लगातार कोई करता रहे तो उत्कृष्ट काल कितना होगा। उक्कस से न आवली आए असंख्य यदि भागो, उत्कृष्ट काल आवली के असंख्यात वे भाग प्रमाण है, क्योंकि अपने अपने अंतर काल को व्यतीत हो जाने पर अपना अपना अंतर काल, वो अंतर काल कितना है वो देखेंगे हम आगे, काल के बाद अंतर देखेंगे नाना जी उनके अपेक्षा कितना अंतर पड़ सकता है। तो मान लेते कोई जीव उसमें नहीं है भुजगार करने वाला, तो उसका अंतर समाप्त हुआ। अब मान एक समय के लिए भी हो सकता है और लगातार अधिक से अधिक काल तक चला तो आवली का असंख्यात होगा।
यहाँ पे तो मुख्यता तो ये वेदक की अपेक्षा होगी, क्योंकि प्रथम ऑप्शन में तो हमने काल की अपेक्षा अंतर ज्यादा देखा है ना, 7 दिन देखा था ना।
यहाँ अंतर कितना है वो बात नहीं चल रही, यहाँ काल देख रहे हैं। उपशम सम्यक्त्व में भी अंतर कितना पड़ सकता है, 7 दिन कहो या 24 दिन रात को, उसके पश्चात लगातार कोई ना कोई जीव उत्पन्न होगा उपशम सम्यक्त्व में, तो उसका काल यहाँ बता रहे हैं। काल और अंतर में फर्क है कि नहीं है
यहाँ पे, तो दोनों लेना है ना, वेदक और प्रथम आ रहा हुआ उपशम समय पे।
हाँ,
क्योंकि दोनों का भुजागार होगा,
यहाँ भुजागार होता है कि नहीं होता इतना ही देखना है। हाँ। अंतर कितना पड़ता है वो बाद में दूसरा अनुगम आएगा अंतर का। अब हम काल देख रहे हैं कि लगातार अंतर के पश्चात कोई ना कोई जीव, कोई ना कोई जीव, कोई ना कोई जीव समय तो उत्पन्न करता रहे भुजागार अवस्थित और अवक्तव्य वाले, तो वो लगातार कितने समयों तक ये ऐसी बात चलेगी, तो आवली के असंख्यात भाग तक। तो निरंतर की बात है, निरंतर आवली के असंख्यात भाग प्रमाण काल तक अवस्थित अवक्तव्य और भुजगार पद पाए जाते हैं। ये बात ख्याल में आई आगे, ये सम्यक्त की बात चल रही, सम्यक्त सम्यक मिथ्यात्व की। अपदर टिदि विहत्या केवचिरम कालादो होती, अल्पतर स्थिति भक्ति वाले जीवों का कितना काल है, कितना होगा। हाँ मयंक भाई, हाँ, अनेक जीवों की अपेक्षा बात चल रही कायम, क्यों, कोई ना कोई समय दृष्टि तो होगी ही, वो तो हमेशा ही पाए जाएंगे और उसमें उद्वेलना करने वाले भी पाए जाएंगे, तो ये निरंतर होगा। यह सूत्र सुगम है, सवद्धा यानी सब काल है, क्योंकि नाना जीवों की अपेक्षा सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व की अल्पतर विभक्ति करने वाले जीवों का तीनों ही कालों में विरह नहीं होता। वो किसके होता है अगर हम देखते हैं स्वामित्व की अपेक्षा देखते हैं, तो ये बात ख्याल में आ सकती है। शेषाणम कम्माणम विहत्या सव्वे सवद्धा, शेष कर्मों की सब स्थिति विभक्ति वाले जीव सर्वदा, ये व के ऊपर रफार करना, सर्वदा पाए जाते हैं। क्या अनंतानुबंधी का अवक्तव्य भी सर्वदा होगा, नहीं होगा, नाना जीवों की अपेक्षा से भी वो सर्वदा निरंतर तो नहीं है, हर समय कोई अवक्तव्य नहीं करेगा। देखो अब इसमें बताएंगे शायद आगे, हाँ लिखे, क्योंकि शेष कर्मों की भुजगार अवस्थित और अल्पतर स्थिति विभक्तियों को करने वाले जीव राशि अनंत है, अतः उनका कभी विरह नहीं होता। यानी अनंतानुबंधी का इसमें इसलिए लिया है कि 16 कषाय 9-9 कषायों को तो इसमें ले लेना मिथ्यात्व के साथ, अनंतानुबंधी के अवक्तव्य की और एक्स्ट्रा बात करेंगे बाद में। अनंतानुबंधी के भुजगार अवस्थित और अल्पतर के लिए वो तो सर्वदा पाए जाएंगे। नवरी, नवरी ने अभी जो कोई विशेषता है उसको बताएंगे, एक्सेप्शन। अनंतानुबंधिनम अवत्तव ठिदि विहत्याणम जहन्नेन एक समूह, किंतु इतनी विशेषता है कि अनंतानुबंधी की अवक्तव्य स्थिति विभक्ति वाले जीवों का जघन्य काल एक समय है। अवक्तव्य किसके होता है? विसंयोजना के बाद जो संयोजना करता है, मिथ्यात्व में आता है। अभी उसका कारण बताते हैं। किंतु इतनी विशेषता है कि अनंतानुबंधी की अवक्तव्य स्थिति विभक्ति वाले जीवों का जघन्य काल एक समय है, क्योंकि अवक्तव्य स्थिति विभक्ति को करने वाले जीवों का प्रमाण अनंत नहीं है। यदि कहा जाए कि इस तरह तो सम्यक्त्व की अल्पतर स्थिति विभक्ति वाले जीवों के साथ व्यभिचार हो जाएगा। क्यों व्यभिचार हो जाएगा? क्योंकि ये जो कथन है ना कि वे जीव अनंत नहीं हो सकते, तो सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व के अल्पतर करने वाले भी अनंत नहीं हो सकते, असंख्यात ही हो सकते हैं, तो उसके साथ व्यभिचार में दोष आ जाएगा। यही कथन वहां नहीं लागू होता है तो कहेंगे उसमें दोष आएगा, क्योंकि इनका प्रमाण भी अनंत नहीं है, अतः इनका भी विरह पाया जाना चाहिए। विरह पाया जाना यानी इसमें भी नाना जीवन की अपेक्षा अंतर्घटित हो जाना चाहिए, क्योंकि वो भी असंख्यात है, ज्यादा नहीं है। सो बात नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार सम्यक्त्व की अल्पतर स्थिति भक्ति के योग्य सब काल है, क्यों सम्यक दृष्टि सभी है जो निरंतर मार्गणाएं है, और सम्यक्त्व संबंधी संयत संबंधी सभी मार्गणाओं में तो अल्पतर ही पाया जाता है, उस प्रकार अनंतानुबंधी चतुष्क की अवक्तव्य स्थिति भक्ति के योग्य सब काल नहीं है। अतः अनंतानुबंधी चतुष्क की अवक्तव्य स्थिति भक्ति वाले जीवों का सर्वदा पाया जाना संभव नहीं है। विशेषार्थ, यहाँ यह बताया है चूंकि अनंतानुबंधी चतुष्क की अवक्तव्य स्थिति भक्ति वालों का प्रमाण अनंत नहीं है, अतः उनका नाना जीवों की अपेक्षा जघन्य काल एक समय बन जाता है। इस पर यह शंका की गई है कि सम्यक्त्व की अल्पतर स्थिति भक्ति वालों का भी प्रमाण अनंत नहीं है, परंतु उनका काल तो सर्वदा बताया है, अतः उस कथन के साथ दो कथनों में परस्पर विरोध हो जाएगा। उसको कहते हैं व्यभिचार, व्यभिचार यानी दोष, तो उस कथन के साथ इसका व्यभिचार प्राप्त होता है। ये शंकाकार ने शंका उठाई। तात्पर्य है कि सम्यक्त्व की अल्पतर स्थिति विभक्ति वाले जीव भी असंख्यात है और अनंतानुबंधी चतुष्क की अवक्तव्य स्थिति वाले जीव भी असंख्यात है। अतः अनंतानुबंधी चतुष्क की अवक्तव्य स्थिति वाले जीव अनंत नहीं होने से इनका जघन्य काल यदि एक समय माना जाता है तो अनंत नहीं होने से यह हेतु व्यभिचरित हो जाता है। वहां हेतु क्या दिया, कारण क्या बताया, वे अनंत नहीं है इसलिए। तो यह जो कारण है, यह जो हेतु है, वो सदोष हो जाएगा, क्योंकि वही हेतु हम सम्यक्त्व में अप्लाई करेंगे तो वो भी उसमें भी अंतर्घटित होगा, परंतु ऐसा तो नहीं होता है। ये न्याय की भाषा समझ में आती है? हाँ। तो यह हेतु व्यभिचरित हो जाता है, क्योंकि सम्यक्त्व की अल्पतर स्थिति वाले जो कि अनंतानुबंधी चतुष्क की अवक्तव्य स्थिति वालों के विपक्ष है, दो पार्टीज है ना, एक पार्टी में हेतु दिया कि वे अनंत नहीं है इसलिए एक समय घटित होता है, तो दूसरी पार्टी वहां भी वह घटित करो, तो ये विपक्ष हो गया। कि जो सम्यक्त्व की अल्पतर स्थिति वाले जो है वो कौन है, अनंतानुबंधी की अपेक्षा वो विपक्ष वाले हैं, अन्य पार्टी है, उनमें भी यह हेतु चला जाता है, उसमें भी ये अप्लाई करो तो उसमें भी एक समय वाला प्रसंग घटित होगा। वीरसेन स्वामी ने इस शंका का जो समाधान किया है उसका भाव यह है यद्यपि ये दोनों विभक्ति वाले जीव असंख्यात है, फिर भी सम्यक्त्व की अल्पतर स्थिति वालों का सर्वदा काल बन जाता है, क्योंकि सम्यक्त्व की अल्पतर स्थिति का एक जीव की अपेक्षा जो जघन्य काल अंतर्मूर्त, ये सम्यक्त्व की अल्पतर स्थिति विभक्ति का जघन्य काल जो अंतर्मूर्त बताया है। लक्ष्मी बहन आप कहेंगी कैसे होगा, सम्यक्त्व की अल्पतर का एक जीव की अपेक्षा जघन्य काल एक अंतर्मूर्त, हाँ मिथ्यात्व में आएगा तो भी अल्पतर रहेगा, उनको मत सुनना, हाँ आप विचार, हाँ क्षायिक करेगा क्योंकि समय को प्राप्त किया, अल्पतर चाहिए ना, हाँ अरविंद भाई ने बताया था हम दोनों नहीं बोलेंगे करके, क्योंकि थोड़ा विचार करेंगे, पहले पढ़ा है हमने, किसी ने सम्यक तो प्राप्त किया वहां से लेना है, क्योंकि हमको मिनिमम काल घटित करना है, तो जो अनादि का है या जिसकी सत्ता नहीं है उसने पहले में पहले सम्यक तो प्राप्त किया, तो सम्यक तो सम्यक मिथ्यात्व की सत्ता बन गई, तो फिर लगातार अल्पतर चलेगा, तो उस काल में उसने विषय योजना कर दी, वेदक समय प्राप्त किया, क्षायिक भी हो गया एक अंतर्मूर्त में सब कुछ, तो उसका जघन्य काल एक अंतर्मूर्त होगा, अल्पतर का जघन्य काल, क्योंकि यदि हम उसको मिथ्यात्व में लाते तो भी उद्वेलना की अपेक्षा अल्पतर चलता ही रहता है, नहीं मिथ्यात्व में जाने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ क्या कहते हैं नीचे से तीसरी लाइन, सम्यक्त्व की अल्पतर स्थिति का एक जीव की अपेक्षा जो जघन्य काल अंतर्मूर्त और उत्कृष्ट काल साधिक 132 सागर बतलाया है, उसे देखते हुए उसका सर्वदा पाया जाना संभव है। ये उन्होंने काल बताया, यह बात बताई, परंतु ये हम देखते ना वो सारे ऊपर की जो निरंतर मार्गणा है, चौथा गुण साना है, पांचवा है, छठा सातवा है, वो तो निरंतर मार्गणा है, उनमें तो अल्पतर बनता ही रहेगा, संयम संबंधी मार्गणा वो भी नियम निरंतर मार्गणा है, परंतु यह बात अनंतानुबंधी की अवक्तव्य स्थिति की नहीं है, क्योंकि एक जीव की अपेक्षा इसका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय ही बतलाया है। क्या कहना चाहते हैं, वहां एक जीव की अपेक्षा अधिक से अधिक काल कितना बताया, साधिक 132 सागर, और यहाँ एक जीव की अपेक्षा अवक्तव्य कितना घटित होता है,
एक समय,
तो वहां कोई ना कोई जीव उसमें तो चल रहा है ना उसका, तो उसका लंबा काल है, तो उसका निरंतरपना भी घटित होता है। अब यदि नाना जीव एक साथ अनंतानुबंधी की अवक्तव्य स्थिति को प्राप्त हो, मान लेते कि 150 लोगों ने एक साथ किया, और दूसरे समय में अन्य जीव इस पद को न प्राप्त हो, चारों गति की अपेक्षा विचार करना, कोई भी जीव ने वो विषय योजना के बाद संयोजना नहीं की एक समय के लिए, तो इसका जघन्य काल एक समय भी बन जाता है, एक समय के लिए किया और बाद में नहीं किया तो एक समय घटित हुआ ना, यही कारण है कि अनंतानुबंधी की अवक्तव्य स्थिति वालों का प्रमाण असंख्यात होते हुए भी, अब उसका जो असंख्यात प्रमाण है वो लगातार एक एक समय में एक एक जीव ने करता रहा, एक एक या दो दो ले लो तो उसका समय कितना होगा, तो आवली का असंख्यात अभाव लगातार। नाना जीव की अपेक्षा भी इसका जघन्य काल एक समय बतलाया है। उपकस्सेन आवलियाय असंख्य यदि भागो, ये उत्कृष्ट काल तो अब बता रहे हैं, उत्कृष्ट काल आवली के असंख्यातवे भाग प्रमाण है, कारण सुगम है। इस प्रकार यति ऋषभ आचार्य के देशामर्शक सूत्र के अर्थ का कथन करके अब उसके द्वारा सूचित होने वाले अर्थ का उच्चारणा के आश्रय से कथन करते हैं, उच्चारणाचार्य ने जो लिखा है उसके आश्रय से अभी उसका कथन दोबारा करेंगे। यही जो अभी हमने काल देखा है, यति ऋषभ आचार्य ने जो बताया है उसका विस्तार से यहाँ वर्णन किया। यही बात उच्चारणाचार्य बताएंगे, उसको दोबारा पढ़ेंगे। कालानुगम की अपेक्षा निर्देश दो प्रकार का है, ओघ निर्देश और आदेश निर्देश। उनमें से ओघ की अपेक्षा मिथ्यात्व, बारह कषाय और नौ नौ कषायों की, भुजगार, अल्पतर और अवस्थित स्थिति विभक्ति वाले जीवों का कितना काल है, कहते सब काल है। वहां तो उन्होंने कुछ अलग से लिखा ही नहीं था, सम्यक की बात शुरू की। अनंतानुबंधी चतुष्क की अपेक्षा इसी प्रकार जानना चाहिए। क्या जानना? अनंतानुबंधी में भी भुजगार, अवस्थित और अल्पतर सदाकाल पाए जाएंगे, किंतु इतनी विशेषता है कि वक्तव्य स्थिति विभक्ति वाले जीवों का कितना काल है, तो जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल आवली के असंख्यात वे भाग प्रमाण है। ये अभी अभी हमने पढ़ा था इसको। सम्यक्त और सम्यक मिथ्यात्व की, अल्पतर स्थिति विभक्ति वाले जीवों का कितना काल है, ते सब काल है, क्योंकि ये सम्यक्त संबंधी मार्गणाएं तो सदाकाल चलेगी। शेष पद स्थिति विभक्ति वाले जीवों का कितना काल है, शेष में भुजगार, अवस्थित और अल्पतर लेना, सॉरी अल्पतर नहीं, अवक्तव्य लेना, तो जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल आवली के असंख्यातवे भाग प्रमाण है। इसी प्रकार तिर्यंच कायोगी, औदारिक कायोगी, नपुसक वेद वाले, क्रोधादि चारों कषाय वाले, असंयत और चक्षु दर्शन वाले, कृष्णादि तीन लेशा वाले भव्य और आहारक जीवों के जानना चाहिए। ये इन्हीं को क्यों लिया, क्यों बाकी में नहीं होता, वैसा नहीं विचार करना है। यहाँ किस किस की बात के लिए, मिथ्या तो बारह वगैरह में भुजगार, अल्पतर और अवस्थित को लिया है। यहाँ कुछ मार्गणाएं छोड़ी है ऐसी कि जिसमें कहीं कहीं तो अल्पतर ही होता है, भुजगार होता ही नहीं है, जो सम्यक तो संबंधी मार्गणाएं, तो उसको नहीं लिया। यहाँ पर जहाँ घटित होता है उन सबको लिया है।
पर यहाँ पे जो ये जो तिर्यंच में भी जो सम्यक्त्व के भुजगार होता है वो तो पंचेंद्रिय में ही होगा, तो देव भी असंख्यात है, नास्ति भी असंख्यात है, पर तिर्यंच को ही लिया सम्यक्त्व के भुजगार अवस्थित, वो एकेंद्रिय की अपेक्षा नहीं, वो तो बात ही नहीं है यहाँ पे, क्योंकि देव भी असंख्यात है, नारकी भी असंख्यात है।
हाँ, देखो आपका प्रश्न हो गया ना, देव असंख्यात है, नारकी असंख्यात है, अकेले तिर्यंचों को ही क्यों लिया यहाँ पर, क्यों? उनमें सभी बातें घटित होनी चाहिए। कौन कौन सी? ऊपर जो हमने मिथ्या तो बारह कषाय वगैरह सब काल जो देखा था उसको,
तो नारकी और देव
उसमें भी होता है
और मनुष्य हाँ, में भी होगा।
और अवक्तव्य स्थिति विभक्ति वाला और जो सम्यक तो सम्यक, ये जो सभी जो कथन है सब में घटित होना चाहिए। ये उत्कृष्ट काल, आवली का असंख्यात भाग वगैरह जो बात बताई है। अब आदेश में हम देखेंगे नारकियों में क्या डिफरेंस है।
जो हम देव देखते हैं ज्योतिष,
उसमें भुजगार हमेशा नहीं बनता, ये विशेषार्थ में आ रही बात, इसीलिए यहाँ उसको अलग से निकाला है। आदेश की बात पढ़ेंगे ना तो ये ख्याल में आ जाएगा, हम पढ़ेंगे तो ख्याल में आता है। पहले तो ओग के समान जहाँ भंग है उसको बताए। अब आदेश की अपेक्षा नारकियों में मिथ्यात्व, बारह कषाय और नौ नौ कषायों की, अल्पतर और अवस्थित स्थिति भक्ति वाले जीवों का कितना काल है, कौन से लिए?
मिथ्यात्व बारह कषाय लिया, सोलह कषाय लिया,
अल्पतर और अवस्थित लिया, भुजगार नहीं लिया। भुजगार को सदाकाल नहीं कहा है। ये भुजगार हमेशा तो एक इंद्रियों में ही घटित होगा। आपको याद होगा जब हमने उत्कृष्ट स्थिति के बंद की बात की थी,
वो तो उत्कृष्ट की बात थी, वहाँ पे तो बहुत लंबा काल,
हाँ, लंबा काल जाता है। परंतु ऐसे ही एक इंद्रियों में जो भुजगार और अल्पतर हमेशा चलेगा, वैसे यहाँ घटित नहीं होगा। भुजगार देखो आगे पढ़ो ना, भुजगार स्थिति विभक्ति वाले जीवों का जगन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल आवली के असंख्यात भाग प्रमाण है। उसके पश्चात फिर अंतर पड़ेगा ही, भले एक समय का हो या अधिक हो, तो लगातार हुए फिर अंतर पड़ा, फिर लगातार हुए फिर अंतर पड़ा, फिर लगातार हुए, इस तरह से हो सकता है। यानी भुजगार वालों में अंतर पड़ सकता है, वैसे अल्पतर में और अवस्थित में नहीं पड़ेगा। अवस्थित क्यों? क्योंकि लगातार उतना का उतना बंद होता है।
ये पंचेंद्रियों की अपेक्षा जो ये यहाँ का क्वेश्चन नहीं है, पंचेंद्रिय में जो हम लोग जो देखते हैं वो तिरियंश में सभी पंचेंद्रिय है, उसकी अपेक्षा ज्योतिष जी ज्यादा है ना,
उसकी अपेक्षा
ज्योतिषी जीव ज्यादा है ना, क्योंकि हम लोग जब सभी पंचेंद्रिय की अपेक्षा,
पर यहाँ अभी हमको
वो अपेक्षा ही नहीं है यहाँ से, खाली चंद्र
तिरियंशों से ज्योतिषी ज्यादा है। देखो हमने क्या देखा, भुजगार का भुजगार में अंतर पड़ सकता है, तो भुजगार का काल कितना होगा, तो कम से कम एक समय तक, और लगातार कोई ना कोई जीव भुजगार करेगा तो आवली के असंख्यात भाग काल तक करेगा, फिर उसमें अंतर पड़ जाएगा। अंतर कितना है वो बाद में देखेंगे, अभी काल देखें। हाँ अकेले असंग में से लेने वाले की गरज नहीं है। भुजगार स्थिति विभक्ति वाला जो है मिथ्यात्व 12 कशा 9 कशाओं की, कोई कम बन रहा है अधिक बन कर रहा है, ऐसा ही जीव लेना। जो स्थिति है उससे अधिक बंद करने वाला जीव लेना है, और अल्पतर अवस्थित तो हमेशा ही पाए जाएंगे, क्योंकि भुजगार करने के बाद भी लगातार अंतर्मूर्त तक उतना ही करता रहे तो उसका अवस्थित घटित होता है, तो उस अपेक्षा से वो निरंतर चलेगा। अल्पतर में वहां तो समय दृष्टि भी हमेशा है ना, नारकियों में तो उनके तो अल्पतर होगा ही। देखो अनंत आनबंदी चतुष्क की अल्पतर और अवस्थित स्थिति भक्ति वाले जीवों का भंग मिथ्यात्व के समान है। अब भुजगार और अवक्तव्य को एक साथ लिया, भुजगार और अवक्तव्य स्थिति भक्ति वाले जीवों का जगन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल आवली के असंख्यात भाग प्रमाण है। सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व की अपेक्षा ओग के समान भंग है, यानी सब काल है
अल्पतर वाला,
अल्पतर वाला क्योंकि समय दृष्टि भी है हमेशा वहां पर, और मिथ्या दृष्टियों में वो उद्वेलना भी चलती रहेगी। इसी प्रकार सब नारकी, अब आपका जो प्रश्न था ना तिरियंचों को ही क्यों लिया, तो उसमें भुजगार कभी कभी होगा, यानी उसमें अंतर पड़ेगा, कभी कभी होगा ना अंतर पड़ेगा, और लगातार कोई ना कोई जीव करता रहे तो आवले के असंख्यात भाग काल तक चलेगा। यही बात और कहां कहां घटित होती है, तो सभी नारकी पंचेंद्रिय तिरियंच, पंचेंद्रिय तिरियंच पर्याप्त, पंचेंद्रिय तिरियंच योनिमति, सामान्य देव भवनवासियों से लेकर सहस्रार स्वर्ग तक के देव, पंचेंद्रिय पंचेंद्रिय पर्याप्त, पहले तो तिरियंचों को लिया था, त्रस त्रस पर्याप्त, पांचों मनोयोगी, पांचों वचन योगी, वैक्रिक का योगी, स्त्रीवेद वाले पुरुषवेद वाले, चक्षुदर्शनी, पीतलेशा वाले पद्मलेशा वाले और संगी जीवों के जानना चाहिए। कृष्णादि को पहले लिया था, उसमें तो सब काल लिया था, भुजगार सहित को सब काल लिया था, अब यहाँ पीत पद्म को लिया है, शुक्ल को छोड़ा क्योंकि उसमें तो अल्पतर होगा। विशेषार्थ नारकियों के एक जीव की अपेक्षा मिथ्यात्व आदि 22 प्रकृतियों की अल्पतर और अवस्थित स्थिति भक्तियों का जो काल बतलाए है उसे देखते हुए यहाँ नाना जीवों की अपेक्षा उनका सर्वदा काल प्राप्त होता है। अतः यहाँ उनका सर्वदा काल बतलाया है, किंतु भुजगार स्थिति की यह बात नहीं है। नाना जीवों की अपेक्षा भी यदि इसके उपक्रम काल का विचार किया जाता है, उपक्रम काल का यानी
उत्पन्न होने का
क्या उत्पन्न होने का, भुजगार यानी भुजगार किया किसी ने, पहला समय ले लो खाली, भुजगार के बाद अवस्थित वाला छोड़ दो, तो भुजगार होने का काल एक समय अगर हम घटित करते उसको भी अगर लिया जाता है तो उसका जघन्य प्रमाण एक समय और उत्कृष्ट प्रमाण आवली के असंख्यातवे भाग प्रमाण प्राप्त होता है। यानी किसी ने भुजगार किया, एक एक समय हर एक का ले लो, दूसरे समय में और किसी ने किया, तीसरे समय में और किसी ने किया, तो लगातार कितने समय तक चलेगा आवली का असंख्यात। इसलिए यहाँ इसका जघन्य और उत्कृष्ट काल उक्त प्रमाण कहा। इसी प्रकार अनंतानुबंधी चतुष्क के पदों का भी यथायोग्य विचार कर लेना चाहिए। उसमें भी हमने देखा था भुजगार के लिए और अवक्तव्य के लिए एक समय से लेकर आवली के असंख्यात विभाग, अल्पतर और अवस्थित सदाकाल, सम्यक्तर सम्यक मिथ्यात्व की अल्पतर स्थिति वाले जीव नरक में भी सर्वदा पाए जाते हैं। वहां सम्यक दृष्टि भी है और वो उद्वेलना करने वाले भी हैं, तो उनके अल्पतर होगी। अब रहे शेष पद वाले जीव, सो उनका उपक्रम काल के अनुसार पाया जाना संभव है। ये उपक्रम काल है, उसमें कोई ना कोई जीव करता रहे उसको उपक्रम काल कहा। उसको भी हमने वहां देखा था आवली का असंख्यात भाग ओग में भी यही बात है। शेष पद वाले ने सम्यक्त और सम्यक मिथ्यात्व में अल्पतर वाले सदा पाए जाएंगे, भुजगार अवस्थित और अवक्तव्य एक समय और आवली का असंख्यात। अतः सम्यक्त और सम्यक मिथ्यात्व के सब पदों के काल को ओग के समान बतलाया। आगे जो और मार्गणाएं गिनाई है, अभी ऊपर हमने पढ़ी ना पंचनी तिरियंश सामान्य देव वगैरह वगैरह, उनमें यह व्यवस्था बन जाती है। अतः उनके कथन को सामान्य नारकियों के समान बतलाया। बात ख्याल में आई इतनी? आगे पढ़ेंगे कि नहीं? हाँ। जैबिन ख्याल आता है क्या? थोड़ा स्लो और जाना है, और थोड़ा स्लो जाना है, फिर से लेना है, क्या करना है, समझ में आ गए? देखो आगे पंचेंद्रिय तिर्यंच अपर्याप्तकों में मिथ्यात्व 16 कषाय और 9 कषायों के तीन पद वाले जीवों का भंग, वो ग रह गए हाँ, भंग के बाद ग करना, नारकियों के समान है। नारकियों में हमने क्या देखा? अल्पतर और अवस्थित वाले सदाकाल हो गए, और भुजगार जगन एक समय और अधिक से अधिक आवली का असंख्यात भाग। सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व की अल्पतर स्थिति भक्ति वाले जीवों का कितना काल है? कहते सब काल है। इसमें तो सारे उद्वेलना वाले ही हो गए। इसी प्रकार विकलेंद्रिय और उनके पर्याप्त और अपर्याप्त, पंचेंद्रिय अपर्याप्त, बादर पृथ्वी का एक पर्याप्त, बादर जल का एक पर्याप्त, बादर अग्नि का एक पर्याप्त, बादर वायु का एक पर्याप्त, बादर वनस्पति का एक प्रत्येक शरीर पर्याप्त, त्रस अपर्याप्त और विभंग ज्ञानी जीवों के जानना चाहिए। विशेषार्थ पंचेंद्रिय तिर्यंच अपर्याप्तकों में मिथ्यात्व आदि 26 प्रकृतियों के अल्पतर आदि तीन पदों का काल नारकियों के समान बन जाता है। इसलिए यहाँ इनके कथन को नारकियों के समान बतलाया है। यह अनंतानुबंधी की अवक्तव्य स्थिति नहीं होती, यह स्पष्ट ही है। तथा सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व की एक अल्पतर स्थिति ही होती है, क्योंकि भुजाकार अवस्थित और अवक्तव्य है वो सम्यक के पहले समय में होती है। साथ ही यहाँ सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व की सत्ता वाले जीव नियम से पाए जाते हैं। मैंने कोई कहेगा नहीं सम्यक में से मिथ्यात्व में गया है और फिर पंचेंद्रिय अपर्याप्त में उत्पन्न हुआ है, वो तो रेयर होगा। तो कहते हमेशा ही पाए जाएंगे पंचेंद्रिय तिरेंच अपर्याप्त भी हमेशा हो गए और उनमें वो उद्वेलना वाले बीच हमेशा सभी जीव समासों में हमेशा पाए जाएंगे। हमने तो एकेंद्रियों में भी देखे थे, यहाँ तो विकलेंद्रिय वगैरह सबको बताया है ऊपर। आगे जो और मार्गणाएं गिनाई है उनमें भी यह व्यवस्था बन जाती है। हमने देखा था ना अभी, सभी विकलेंद्रिय लिए, सभी उसके पर्याप्त लिए, अपर्याप्त लिए और सभी एकेंद्रिय लिए वहां पर। अतः उनके काल को पंचेंद्रिय तिर्यंच अपर्याप्तकों के समान बतलाया है। सामान्य मनुष्यों में मिथ्यात्व 12 कषायें और 9 कषायों का भंग नारकियों के समान है, यानी भुजगार में अंतर है। अनंतानुबंधी चतुष्क की अपेक्षा इसी प्रकार जानना चाहिए, किंतु इतनी विशेषता है कि अवक्तव्य स्थिति भक्ति वाले जीवों का कितना काल है, जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल संख्यात समय। ऐसा क्यों? हाँ देखो, ये कौन से जीव है? अनंतानुबंधी के अवक्तव्य करने वाले ये पर्याप्त मनुष्य ही हो गए, क्योंकि अपर्याप्तों में तो वो यानी विसंयोजना के बाद मिथ्यात्व में आने वाला वो नहीं हो सकता है, तो वो जीव संख्यात ही हो गए। लगातार कोई ना कोई करेगा तो भी संख्यात समय ही होगा। सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व की अल्पतर स्थिति भक्ति वाले जीवों का कितना काल है? तो सब काल है, क्योंकि उसको समय दृष्टि भी हमेशा हो गए और उद्वेलना वाले भी हो गए। हाँ। भुजगार अवस्थित और अवक्तव्य स्थिति भक्ति वाले जीवों का कितना काल है? जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल संख्यात समय। यानी लगातार कोई ना कोई जीव सम्यक तो प्राप्त करेगा भुजगार अवस्थित या अवक्तव्य के साथ, तो संख्यात समय। इसी प्रकार मनुष्य पर्याप्त और मनुष्यनियों के जानना चाहिए, किंतु इतनी विशेषता है कि जहां आवली का असंख्यातवा भाग काल कहा है वहां संख्यात समय काल कहना चाहिए। अभी मनुष्यों में आवली का असंख्यात भाग कहाँ कहा था? ऊपर देख, हाँ बोलो अश्विन भाई।
मनुष्य में आवली का असंख्यात भाग कहाँ पे भी नहीं बताया ना?
कहाँ नहीं कहा, फिर नारकियों के समान कहा तो था ना। सामान्य मनुष्यों में मिथ्यात्व 12 कषाय और 9 कषायों का भंग नारकियों के समान कहा है?
वो तो
हमेशा होगा तो अल्पतर और अवस्थित होगा।
हाँ।
और भुजगार के लिए वहाँ भी आवली का असंख्यात भाग घटित होगा। यहाँ आवली का असंख्यात भाग ऐसा कहीं लिखा नहीं, ऊपर से अभी हम पढ़ते आए हैं, परंतु नारकियों के समान भंगय का अर्थ क्या है? उसमें भुजगार को हमने घटित किया था वैसा। हाँ हाँ, तो पर्याप्त मनुष्यों में, वहां सामान्य मनुष्यों में तो आवली का असंख्यात भाग भुजगार का कहा था, परंतु पर्याप्त मनुष्यों में वो संख्यात समय होगा। मनुष्य अपर्याप्तकों में, अभी केवल अपर्याप्तकों की बात ली, वो तो सांतर मार्गणा है। मिथ्यात्व 16 कषाय और 9 कषायों की भुजगार अल्पतर और अवस्थित स्थिति भक्ति वाले जीवों का तथा सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व की अल्पतर स्थिति भक्ति वाले जीवों का कितना काल है, तो जघन्य काल एक समय, ये मार्गणा ही सांतर है तो इसलिए ये लिया। और उत्कृष्ट काल पल्योपम के असंख्यात वे भाग प्रमाण है। देखो कभी कभी ऐसा होगा ना कि कोई भी मनुष्य पर्याप्त में है ही नहीं, कोई भी जीव, तो फिर वहां कोई जीव आ गया,
एक जीव उत्पन्न हुआ
तो एक जीव होगा। और कोई ऐसा भी हो सकता है कि लगातार कोई ना कोई आता रहा, तो पल्ले के असंख्यात भाग प्रमाण काल तक आते रहेंगे। तो इसलिए क्या कहा यहाँ पर, हमेशा हम अवस्थित और अल्पतर हमेशा ही देखते थे, है ना?
या समय अल्पतर में तो अंतर्मूर्त मिनिमम होगा।
आपका प्रश्न ऐसा है, कोई मनुष्य अपर्याप्त में जन्मता है तो अंतर्मूर्त तो रहेगा ही, तो यहाँ एक समय कैसा घटित किया? तो एक समय सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व के लिए घटित किया है, जो उद्वेलना की अपेक्षा घटित हो जाएगा, उसमें कोई जीव आ गया है।
उद्वेलना का एक समय बाकी
है। एक समय में उद्वेलना की उसने,
दो समय
वो जीव तो अपर्याप्त में रहा परंतु उसकी सत्ता रही नहीं। तो यहाँ तो सबके लिए एक समय नहीं कहा, सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व के लिए एक समय कहा है।
सभी के लिए बताया ना उन्होंने।
मनुष्य अपर्याप्तकों में कहाँ होता है?
उजागर होगा ना
अपर्याप्तों में, सम्यक्तों का बुजा।
हाँ, बाकी के,
बाकी के लिए तो क्या कहा, देखो हाँ तथा उसको भी लिया ना। देखो ऊपर मनुष्य अपर्याप्त को में मिथ्यात्व 16 कषाय 9 कषाय की भुजगार अल्पतर और अवस्थित, उसके लिए भी लिया।
नहीं पर अल्पतर का तो मिनिमम काल अंतर्भूत हो जाएगा, वो मेरा क्वेश्चन था, क्योंकि अल्पतर एक जीव कोई भी है और उसने अल्पतर ही किया
तो नहीं, वहाँ अल्पतर ही किया ऐसा कैसे हो सकता है? उसको
हमने आगे देखा,
जघन्य करण है ना, हमको उत्कृष्ट कहाँ किया, वो उत्कृष्ट में घटित करेंगे। आप एक जीव की अपेक्षा सोच रहे हैं,
पर यहाँ पे तो कभी ऐसे हो सकता है ना कि अपर्याप्त दशा अपर्याप्त में एक जीव ही है।
हाँ,
वो भी हमने घटित किया था।
हाँ, एक जीव
तो
है,
एक जीव की अपेक्षा अल्पतर।
हाँ,
अच्छा मिनिमम एक समय भी होगा,
मिनिमम हमको घटित करना है ना।
अच्छा, उसने एक समय के लिए अल्पतर,
बाद में अधिक किया, ऐसा भी जीव लिया। तो जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल पल्योपम के असंख्यात भाग प्रमाण है, किंतु इतनी विशेषता है कि भुजगार स्थिति विभक्ति वाले जीवों का उत्कृष्ट काल आवली के असंख्यात भाग प्रमाण है, वो है उल्टा हुए है। विशेषार्थ इसी का विशेषार्थ देखते,
यहाँ पे हमने अंतर देखा था, वो पल्ले का असंख्यात प्रमाण है।
इसका अंतर भी पल्ले का असंख्यात भाग है और काल भी पल्ले के असंख्यात भाग है, जैसे सासादन में भी ऐसा ही था। विशेषार्थ, मनुष्यों में अनंतानुबंधी चतुष्क की अवक्तव्य स्थिति वाले जीव संख्यात ही होते हैं, अतः इनमें उक्त विभक्ति वालों का उत्कृष्ट काल संख्यात समय बतलाया है। यही बात सम्यक्त और सम्यक मिथ्यात्व की भुजगार अवस्थित और अवक्तव्य स्थिति वालों के संबंध में जान लेना चाहिए। मनुष्य पर्याप्त और मनुष्य नहीं तो संख्यात ही होते हैं, अतः मूल में सामान्य मनुष्यों में जिन स्थिति भक्ति वालों का आवली के असंख्यात भाग काल बतलाया है, वहां भी इनके संख्यात समय काल जानना चाहिए। जो हमने अभी दार्की के समान भंग ऐसा देखा था, तो वहां तो अवली के संख्यात भाग है परंतु पर्याप्त मनुष्य और मनुष्यनी में संख्यात समय घटित करना। लब्धि अपर्याप्तक मनुष्यों का उत्कृष्ट काल, यानी उस मार्गणा का लगातार अन्य अन्य जीवों का उत्कृष्ट काल, एक जीव की अपेक्षा तो अंतर्मूर्तों का। पल्ले के असंख्यात भाग प्रमाण है, अतः यहाँ सब प्रकृतियों के संभव पदों का उत्कृष्ट काल उक्त प्रमाण बतलाया। किंतु भुजगार स्थिति का उपक्रम काल ही आवली के असंख्यात भाग प्रमाण है, अतः इसकी अपेक्षा उत्कृष्ट काल आवली के असंख्यात भाग प्रमाण बतलाया है। यानी जहाँ वो निरंतर होते हैं ना, मिथ्यात्व के अल्पतर वगैरह अवस्थित निरंतर पाए जाते हैं, तो वहां तो जो मार्गणा का काल है उसका उसका उतना काल बतलाया, परंतु भुजगार में तो आवली का असंख्यात भाग ही घटित होता है, तो उसको तो उतना ही कहेंगे। आनत कल्प से लेकर उपरिम ग्रेवेक तक के देवों में मिथ्यात्व 16 कषाय और 9 कषायों को कषायों की अल्पतर स्थिति भक्ति वाले जीवों का सब काल है, क्योंकि वहां अल्पतर ही होते हैं, सबको होता है। आनत से लिया ना ऊपर तक, किंतु अनंतानुबंधी चतुष्क की अवक्तव्य स्थिति भक्ति वाले जीवों का काल ओग के समान है, यानी जगन ने एक समय और उत्कृष्ट आवली का असंख्यात्व भाग। सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व की भुजगार अवस्थित और अवक्तव्य स्थिति भक्ति वाले जीवों का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल आवली के असंख्यात्व भाग प्रमाण है, तथा अल्पतर स्थिति भक्ति वाले जीवों का काल सर्वदा है। इसी प्रकार शुक्ल लेशा वाले जीवों के जानना चाहिए। अनुदिश से लेकर सर्वार सिद्धि तक के देवों में 28 प्रकृतियों की अल्पतर स्थिति भक्ति वाले जीवों का काल सर्वदा है, क्योंकि वहां हमेशा अल्पतर ही होगा। इसी प्रकार अभिनिबोधिक, ये आनी भी हुआ है, अभिनी करना, पहले भी और बाद में नी, अभिनिबोधिक ज्ञानी, श्रुत ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, श्रु करो, मनपरे ज्ञानी, संयत, सामायिक संयत, छेदोपस्थापना संयत, परिहार विशुद्धि संयत, संयता संयत, अवधि दर्शनी, सम्यक दृष्टि, क्षायिक सम्यक दृष्टि और वेदक सम्यक दृष्टि जीवों के जानना चाहिए। इसका विशेषार्थ कल देखेंगे। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक न हो सदा देत हो। प्रेरणा में